सुर्खियों में
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भ्रष्टाचार पर रोक के लिए लाए गए 3 प्रमुख विधेयकों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक मुकेश रंजन, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद में 3 बिल पेश किए, जिनके तहत प्रधानमंत्री सहित उन निर्वाचित प्रतिनिधियों को पद से हटाने का प्रावधान है जिन्हें गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया था। इस बिल के महत्व पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक मुकेश रंजन। श्री रंजन, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद
रंजन जी। पहला सवाल ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 पेश किए। आप हमें विस्तार में बताइए कि इन विधेयकों का क्या प्रावधान है।
अनुभव जी, एक चीज पहले समझ लेते हैं कि ये एक ही तरह की के प्रावधानों के साथ 3 अलग अलग बिल क्यों लाए गए हैं, पहले ये समझ लेते हैं। जो हमारा 130वां संशोधन विधेयक आ रहा है, ये विधेयक है पूरे देश के लिए, जिसमें जितने राज्य हमारे हैं, सारे राज्य और केंद्र सरकार, वो पूरा उसमें निहित है। फिर आता है कि हमें संघ राज्य के लिए, संघ शासित प्रदेशों के लिए अलग से कानून लाना पड़ रहा है, क्योंकि उसी प्रावधानों को अलग से, चूंकि वो संघ, जितने संघ माने केंद्र शासित प्रदेश जो बने हैं वो अलग कानून से बने हैं, तो फिर उस कानून में अलग बदलाव की जरूरत है। फिर जम्मू कश्मीर हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, पर वो एक अलग कानून से बन के आया। सो तीनों के लिए अलग अलग संशोधन विधेयक लाए गए हैं। अब इसमें जो आपने पूछा कि प्रावधान क्या क्या है, सो प्रावधान बहुत सिंपल और छोटे हैं। एक पैराग्राफ में पूरे प्रावधान को लिख दिया गया है, जिसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि शुचिता लानी है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक शब्द होता है कि आप अरेस्ट हो गए हैं, आप संगीन अपराध में अरेस्ट हुए हैं, तो संवैधानिक पद पे आप बैठे रहें, ये थोड़ा मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली और मोरालिटी के बेसिस पे जो हम कहते हैं, वहां थोड़ा वो गलत सा प्रतीत होता है। तो इसमें प्रावधान बहुत सिंपल 2 प्रावधान किए गए हैं कि 30 दिन तक लगातार यदि कोई व्यक्ति अंडर अरेस्ट रहता है,
व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं मंत्रियों की,
मंत्रियों की, जो भी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, किसी ऐसे संगीन और मतलब सीरियस ऑफेंस के लिए गिरफ्तार होता है, और वो गिरफ्तारी या डिटेंशन, तो वो यदि 30 दिन तक लगातार हो जाए, एक तो बात सही है कि 24 घंटे के अंदर में हैबियस कॉर्पस लगता है और कोर्ट में जाना, और फिर कोर्ट उनको बेल देती है या बेल नहीं देती, बेल मिल गया तो ये प्रावधान नहीं लागू होगा, पर वो जुडिशियल कस्टडी में कन्वर्ट हो गया और वो 30 दिन तक लगातार, या पुलिस कस्टडी में भेज दिया कोर्ट ने और 30 दिन तक लगातार, 31वें दिन गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिकमेंड करना होगा मंत्रियों के केस में कि आप उनको पद से हटा दिया जाए। तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को और गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि उनको उनके पद से हटा दिया जाए। सो ये एक तो 30 दिन की मियाद है इसमें प्रोविजन में। दूसरा है कि वो संगीन अपराध जिसमें सजा 5 और 5 साल से ज्यादा होगा, उस केस में ये जो कानून आ रहा है और ये जो संशोधन आ रहा है वो एप्लीकेबल होंगे मंत्रियों पे, मुख्यमंत्री पे और प्रधानमंत्री पे।
तो अब तक संविधान के तहत केवल दोषी सांसद को पद से हटाया जा सकता था, लेकिन गिरफ्तारी के बावजूद जो मंत्री थे, चाहे केंद्रीय मंत्री हो चाहे राज्य मंत्री हो, उन्हें अपने पद पर बने रहने पर कोई रोक नहीं थी। तो फिर इन विधेयकों को पेश करने की जरूरत क्यों महसूस हुई, जिसमें न सिर्फ केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री है, बल्कि प्रधानमंत्री को भी शामिल किया गया है। इस तरह के उच्च पदस्थ निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करने का क्या कारण है, और इन विधेयकों को इस वक्त लाने की क्यों जरूरत महसूस हुई?
एक बात साफ है, ये जो आज की सरकार है, इस सरकार में 0 टॉलरेंस करप्शन को लेकर है, भ्रष्टाचार को लेकर है, और सार्वजनिक जीवन में शुचिता का मानदंड ये बढ़ाकर रखे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके वरिष्ठ मंत्रीगण इस चीज को फ्रॉम द फ्रंट एस्टेब्लिश करते हैं। अब हुआ ये कि कुछ वर्षों पहले तक, जो अभी मैंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की है, एक सामाजिक मोरालिटी भी होती है, राजनैतिक मोरालिटी भी होती है, तो राजनैतिक और सामाजिक मोरालिटी के बेसिस पे कुछ वर्षों पहले तक इसको मानते थे लोग। और मैं कहूं कि मैं एक दो एग्जाम्पल दे सकूं तो आप सबको याद होगा, श्रोताओं को भी याद होगा, जो फॉर्डर स्कैम था, जो चारा घोटाला था बिहार का, तो पहले तो इन्वेस्टिगेशन हुआ और फिर जैसे ही चार्जशीट फाइल हुई थी लालू प्रसाद यादव ने पद छोड़ दिया था। फिर बाद में क्या हुआ, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बन गई, वो एक अलग
बात है।
लेकिन अब जो कुछ तात्कालिक आज के कुछ एग्जांपल्स देखे जाएं तो इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या तमिलनाडु के एक मंत्री बालाजी सेंथिल, तो इन्हें अरेस्ट किया गया, ये जुडिशियल कस्टडी में भी रहे और बहुत दिनों तक रहे, लेकिन इन लोगों ने पद नहीं त्यागा। तो अब ऐसी स्थिति देखें कि जो मंत्री है या मुख्यमंत्री है वो यदि जेल में है तो शासन प्रशासन का क्या होगा। एक तो वो प्रैक्टिकल चीज है कि अब क्या आप कैबिनेट की मीटिंग जेल में लेंगे, ये तो हो नहीं सकता है। तो एक तरह का क्राइसिस भी हो जाता है इससे गवर्नेंस का, और गवर्नेंस के क्राइसिस के साथ साथ ये मुझे लग रहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या सोशल मोरालिटी, पॉलिटिकल मोरालिटी, जो हम तीनों की बात कर रहे हैं, इन तीनों के यार्डस्टिक पे भी ये सही नहीं बैठता है। चूंकि ये चीजें होने लगी तो ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि सरकार ने सोचा कि इसको वंस फॉर ऑल, एक बार इसको सेटल कर देते हैं और इसे एक कानूनी जामा दे देते हैं। अब आप देखिए, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, जिसकी बात आप कह रही हैं कि विधायक और सांसद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं या उन्हें रिजाइन करना पड़ता है, तो सांसद और विधायक जो बनते हैं वही तो मंत्री बनते हैं।
बिल्कुल,
इस देश में तो हमारा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो उसमें जो प्रोविजन है 2 साल या 2 साल से ज्यादा, उसमें आप डिबार हो जाते हैं फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस, मतलब आप चुनाव लड़ने से रोक लग जाती है आप पे, और उसके बाद उसका प्रोसेस चलता है। तो मंत्रियों के लिए मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा, मुझे लग रहा है सॉफ्ट है इन कंपैरिजन टू दैट, उसके कंपैरिजन में ये सॉफ्ट लॉ है। 5 साल जिसमें सजा निहित हो, वैसे ही कानून के तहत यदि आप अरेस्ट हुए हैं तभी, सो आप सांसद और विधायक और मंत्रियों में तो फर्क दिख रहा है, तो इसलिए लग रहा है कि, लेकिन इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, उसमें वो दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सरकार थोड़ी सी अनकॉम्प्रोमाइजिंग है ऑन द इशू ऑफ करप्शन।
और अब सुनते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये विधेयक संसद में पेश करते हुए लोकसभा में क्या कहा।
महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की मंजूरी दी जाए।
रंजन जी, आप इन्हें सॉफ्ट लॉ कह रहे हैं कि अगर आप देखें कि जो विधायक और सांसदों को जो डिबार करने का जो एक लॉ है, जो कानून है, उसकी तुलना में ये सॉफ्ट लॉ है, पर अगर जो विधेयक का विरोध कर रहे हैं उन लोगों का ये तर्क है कि, और या वो तर्क दे सकते हैं कि इसका दुरुपयोग महत्वपूर्ण मंत्रियों, यहाँ तक कि मुख्यमंत्रियों को हिरासत में लेकर या गिरफ्तार करके हटाने के लिए किया जा सकता है, तो आपको इस विरोध में कोई दम लगता है? क्योंकि जो पक्षधर हैं इस विधेयक के, उनका ये कहना है कि ये राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए एक बड़ा सुधार है, तो आप इसे कैसे देखते हैं?
ये जो संशोधन विधेयक आए हैं ये अभी तुरंत तो कानून बन नहीं रहे हैं, इस पे चर्चा होगी। ये सुधार ना हो इसके पक्ष में कोई नहीं होगा।
विरोध तो आज से शुरू हो गया, हमने संसद में देखा।
इसके प्रावधानों के तहत जो सुधार आ रहा है वो सुधार का पक्षधर सब होगा, यदि वो सामाजिक प्राणी है तो। लेकिन ये जो विरोध है, इस विरोध में जो मुझे एक चीज दिख रहा है वो है एक ट्रस्ट डेफिसिट, एक वर्ड होता है, एक तरह का जो माहौल है ना विपक्ष और सत्ता दल के बीच में, जो खाई बड़ी होती चली जा रही है, तो ट्रस्ट डेफिसिट ने इनके अंदर, जो विरोधी हैं उनके अंदर एक संशय डाला है, और वो संशय है कि इसको यूज करके ऑपोजिशन की सरकारों को गिराने का प्रयास किया जा सकता है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन गृह मंत्री ने ये बात तो बहुत क्लियर कह दिया ना कि हम इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज रहे हैं, तो जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएगी तो वहां थ्रेड बेयर इसका डिस्कशन होगा और इनकी त्रुटियों को ठीक करने की कोशिश होगी। और जो इसमें प्रावधान है, मान लिया जाए कि अभी ये प्रावधान ब्लैंकेट पावर दे रहा है गवर्नर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को और प्रेसिडेंट को, ये हो सकता है उसमें कुछ चीजें जोड़ी जाएं, कुछ घटाई जाएं, कुछ चीजें बहुत ज्यादा बोली गई तो कम हो जाए। इसका विरोध कर रहे हैं, उसका कारण है ट्रस्ट डेफिसिट और सेंट्रल एजेंसीज को लेकर जो एक ओपिनियन बनाकर बैठा हुआ है ऑपोजिशन, उसके कारण ये विरोध दिख रहा है मुझे। लेकिन ये विरोध के बावजूद भी बिल इंट्रोड्यूस हो गया है, जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएगी वहां ऑपोजिशन के भी और विरोधी दल के भी नुमाइंदे वहां बैठेंगे और वहां डिस्कशन होगा और डिस्कशन से कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा फिर
जी। और इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाएं, जैसे कि रंजन जी ने अभी बताया कि इन विधेयकों को एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया है जहां पर इस पर चर्चा होगी। तो चलिए सुनते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर क्या कहा।
संयुक्त समिति को सौंपने की दरखास्त करने वाला इस पर संयुक्त समिति जो राज्यसभा और लोकसभा पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों की बनेगी, जो इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आए।
जो ये संविधान 130वां संशोधन विधेयक है उसके उद्देश्य और कारणों में जो विवरण दिया गया है आपसे शेयर करूंगी और अपने लिसनर्स के साथ भी शेयर करूंगी कि निर्वाचित प्रतिनिधि भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह अपेक्षा की जाती है कि वे राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर केवल जनहित और जन कल्याण के लिए कार्य करें। तो ये जो इसके शब्द हैं, जो इसके कारण और इसके जो उद्देश्य बताया गया है इस पर्टिकुलर विधेयक का, हम देख सकते हैं कि इस विधेयक में भारत के नागरिकों का ध्यान रखा गया है, जो जाहिर है कि चाहते हैं कि जो उनके चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो चरित्रवान हो और दोष मुक्त हो। और ये भी तो इससे सुनिश्चित होगा कि आपराधिक मामलों में फंसे और जेल में रहने वाले लोग जो है वो सत्ता में ना बने रहें। तो भारत के जो हम और आप जैसे जो आम नागरिक हैं, हम जब एक किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं और संसद में या उनको विधानसभा में भेजते हैं तो हमारी भी कुछ उनसे उम्मीदें होती हैं। और आप मानेंगे कि ये विधेयक जो है उन उम्मीदों को, उन आकांक्षाओं को भी ध्यान में रख रहा है।
इसमें एक चीज बहुत क्लियर है कि ये जो संशोधन आ रहे हैं ये पब्लिक लाइफ में सुचिता के लिए है। अब आप इसको थोड़ा फ्लिप साइड करके देखेंगे, पलट कर देखिए, तो जो व्यक्ति बाहुबली है, कोई जरूरी नहीं है कि वो मंत्री बन गया तब उसको मंत्री पद से हटाया जाएगा। जो व्यक्ति ऐसे किसी संगीन अपराध में लिप्त रहा, 6 महीने जेल रहा, बेल पे बाहर आया, चुनाव लड़ गया, तो वो सांसद तो बन जाता है
जी, बिल्कुल।
लेकिन इस प्रावधान से उस तरह के जो राजनेता होंगे, जो कि राजनीति को, मतलब जो क्रिमिनल उनका बैकग्राउंड है
जी,
उससे बाहर निकलकर वो राजनीति में जो स्टैब्लिश हो जाते हैं, मुझे लग रहा उस पे भी ये लगाम डालेगा। इसलिए इसकी जो ऑब्जेक्टिव्स में ठीक लिखा हुआ है कि पीपल, जो लोग है ना, लोगों की मजबूरी होती है। मान लीजिए तीनों तरफ के कैंडिडेट उसी कैरेक्टर के हैं तो वो क्या करेंगे? तो उस तरह के जो भी हमारे नुमाइंदे होंगे उनके चुनाव हो जाने के बाद भी वो मंत्री नहीं बन पाएंगे। यदि उनको किसी ने मंत्री बना दिया तो फिर ये प्रावधान लग जाएगा और उनको वो मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा।
आखिरी सवाल, क्या आप आज जो संसद में विधेयक पेश किए गए हैं उनको देश में कानूनी सुधारों को जारी रखने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता की निरंतरता के रूप में देखते हैं?
हाँ जरूर, ये तो एकदम साफ दिख रहा है, जो मैंने पहले भी कहा कि मोदी सरकार सुचिता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सोशल मोरालिटी एंड पॉलिटिकल मोरालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है, ये उम्मीद की जाती है कि उस तरह के राजनीतिक कार्यकर्ता और राजनीतिक नुमाइंदे हैं उन लोगों में अपने आप से होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुआ, क्योंकि हमने एक मंत्री और मुख्यमंत्री को देख लिया कि वो इतने पद लोलुप थे कि वो जेल जाने के बाद भी पद नहीं छोड़ रहे हैं। तो उस स्थिति में कानून लाना मजबूरी है और वो जो अभी तक का जो सुधार की प्रक्रिया चल रही है उसमें एक और ईंट जुड़ गई आज।
मुकेश जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भ्रष्टाचार पर रोक के लिए लाए गए 3 प्रमुख विधेयकों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक मुकेश रंजन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में